स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में तीनों साधनाएं पूरी हो जाती हैं, वैराग्य की भी, बोध की भी और भक्ति की भी। जब व्यक्ति तीनों साधनाओं को पूर्ण होकर के इस संसार में जीता है तो संसार की हर परिस्थिति में वह भगवान का अनुग्रह अनुभव करता है। भगवान से किसी भी प्रकार की शिकायत उसकी समाप्त हो जाती है। वह परिस्थिति चाहे जैसी भी होवे, यहां तक कि शरीर भी समाप्त होने का अवसर होवे तो भी भगवान समझते हैं, ओ भक्त समझता है या वह ज्ञानी समझता है कि इसमें भी कोई न कोई ईश्वर की कृपा ही है। इस परिस्थिति में भी भगवान की कोई न कोई कृपा ही है। तो कहां और जो कृपा भगवान ने किया है उस कृपा का भी यदि दूसरे ढंग से निरूपण करें कि इन कृपाओं के रूप में भगवान हमें एक साधना की प्रक्रिया सिखा रहे हैं। से अविद्या रूपी पूतना मरी तो रजोगुण रूपी कौन है? सकटा नहीं, जन्म मृत्यु का प्रवाह रूपी सकटासुर मर जाएगा, ठीक है ना? संसार की वासना, संसार में मेरा नाम हो जाए, लोकेशणा रूपी तृणावर्त मरेगा। एक ज्ञान के बाद ये सब स्थिति आएंगी। फिर एक केशी नामक राक्षस था, वह रजोगुण का प्रतीक है क्यों घोड़े के रूप में आया था। तो आपके भीतर व्यर्थ क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, व्यर्थ कर्म का विस्तार आप कर नहीं सकते हो। शरीर निर्वाह मात्र के लिए जितनी आवश्यकता होगी उतना कर्म करेंगे। फिर क्या होगा? अंतःकरण रूपी आंगन में रहने वाले जो दो वृक्ष हैं कौन हैं? राग और द्वेष, जिनके कारण वह वृक्ष जड़ बना हुआ है, उन राग द्वेष को हटा देंगे और आपका अंतःकरण खुद चैतन्य बन जाएगा। फिर एक अघासुर है, क्योंकि अपने स्वरूप को जाने बिना हम जो भी कर्म करते हैं वह पाप ही करते हैं। तो उन अघासुर का संबंध, मतलब उन कर्मों का संबंध उस ईश्वर से कर देंगे। हम जो भी कर्म करें किसके लिए? ईश्वर की भावना से, ईश्वर का चिंतन। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करते हुए तुम युद्ध माने दुनिया के हर काम करो, लेकिन मेरे को भूलना नहीं। मेरा अनुस्मरण माने अपने स्वरूप का स्मरण बना रहे, तो वह पाप कर्म भी अघ भी अनघ बन जाते हैं। वह पाप कर्मों का प्रभाव, क्योंकि उसकी दृष्टि में सारे कर्म अभिनय की तरह हो जाते हैं। भाई एक फिल्म में अभिनेता तमाम कर्म करता है, गाली भी देता होगा, मारपीट भी करता होगा, किसी का धन भी छीनता होगा, किसी का दान भी देता होगा, तो क्या उसको पुण्य अथवा पाप लगता होगा? क्या क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो अपने को याद कर रहा है, अपने को कभी भूलता नहीं है। तो इसे हम अपने स्वरूप को याद करके पिता का भी रोल करेंगे, पत्नी का भी रोल करेंगे, पति का भी अभिनय करेंगे, पुत्र का भी अभिनय करेंगे, मालिक का भी करेंगे, कहीं नौकर का भी करेंगे। और मालिक का अनुभव नहीं करके डांटेंगे भी, लेकिन उस डांट से भी कोई पाप लगने वाला है ही नहीं। तो उन कर्मों का संबंध किसके साथ जोड़ देना? उस परमात्मा के साथ। फिर भगवान ने एक काम और किया, एक अग्नि थी, उस अग्नि का पान कर लिया। अग्नि माने क्या हुआ? जीवन में आने वाले जो ताप हैं, उन तापों को एक दूर करने वाला है तो वह कौन है? परमेश्वर ही है। वह ताप चाहे आधि दैविक हो, चाहे आधि भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक ताप हो, तीनों प्रकार के तापों को यदि दूर करने वाले हैं तो कौन है? ईश्वर है। इसलिए भगवान ने एक बार अग्नि को दिन में पिया था, है ना, दिन में, एक बार अग्नि को रात्रि में पिया था, अर्थात भगवान दिन रात हर पल आपकी सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। एक बार परोक्ष रूप से किया था, एक बार अपरोक्ष रूप से किया था, एक बार आंख बंद करके कहा तुम लोग खड़े हो जाओ, और दूसरी बार सबके देखते देखते उन्होंने अग्नि का पान किया। तो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से दोनों तरह से वह इस जगत का कल्याण ही कर रहे हैं। कल इस पे खूब चर्चा किए कि हमारी सुरक्षा करने वाला है कौन, हमारा फैमिली डॉक्टर कौन है, बिना पेमेंट वाला है। अब फैमिली डॉक्टर को तो फोन करके बुलाना पड़ता है, इन परमात्मा को 24 घंटे हर पल आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता नहीं रहता, बताओ। अभी ज्यादा खा लो, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, दावत में गए, उल्टी आ जाएगी, उल्टी वाली दवाई कौन दिया बताओ, क्योंकि वह भोजन आपके शरीर के लिए पॉइजनस बन जाता। यदि उस भोजन को अब परमात्मा निकालता नहीं तो तुम्हारा शरीर ही नष्ट हो जाता, इसलिए या तो उल्टी हो जाएगा अथवा लूज मोशन हो जाएगा। किसी न किसी रूप में वह अंदर जो जहर घुसा हुआ है फूड प्वाइजनिंग होने से परमात्मा क्या करता है, बचाता है। बताओ वो दवाई कौन देता है, डॉक्टर देता है परमात्मा देता है, बताओ है? कल कई भी मैंने बताया, देखो कहीं घाव होता है तो खून जमाता कौन है अथवा उस घाव को भरता कौन है, भाई डॉक्टर भी एक पट्टी बांधता है ना, क्या करता है, तो हिलाओ जुलाओ तो पट्टी क्या होती है, खिसक जाती है। बल्कि भगवान मालिक है, एक बार यहां मेरे को एक रसौली सी हो गई अभी पानीपत में, तो इसको चीड़ा लगवा दिया, पक गई थी, इसका डॉक्टर ने भाई यहां पट्टी बांधे कैसे बांधे, तो स्टीकर से क्या किया, चिपका दिया। तो जब दूसरे या तीसरे दिन डॉक्टर के यहां गए ना, तो इसने यूं स्टीकर खींचा कि अगल बगल का मांस छिल गया पूरा, मतलब वो घाव का दर्द कम है, जो घाव छीलने से हो गया वो दर्द और ज्यादा हो गया। ये कौन किया, उस डॉक्टर ने, तभी वो पट्टी खिसक जाएगी, पानी में भीग जाएगी, कुछ न कुछ होगा, नहाने के लिए बड़ा ध्यान देना पड़ता था। लेकिन यदि कोई घाव हो जाए परमात्मा उसके ऊपर एक पपड़ी जमा देता है, क्या जमाता है, देखा नहीं देखा पपड़ी, वो पपड़ी इतनी सॉलिड होती है, कभी अजमा के देखना, उसने सुई भी चुभो न तो सुई चुभती नहीं है। अब वो पपड़ी कब ठीक होगी, कब छूटेगी, जब अंदर का घाव पूरा भर जाएगा तभी खिसकेगी अपनी जगह से, और जब तक अंदर का घाव भरेगा नहीं तब तक परमात्मा ने जो पट्टी बांधी है ना वो कभी खिसकने का नाम है? लेती नहीं। अब उस पपड़ी के ऊपर कितना भी पानी डालो अंदर भी जाने वाला है नहीं। और डॉक्टर वाली, इसलिए कई लोग कहते हैं घाव को बांधो मत, थोड़ा खुला रख दो, उसके ऊपर एक क्या हो जाए पपड़ी, एक लेयर जम जाए ना, और फिर कोई चिंता नहीं है अंदर के घाव की, अंदर तो इलाज कर ही रहा है कौन, तो बताओ सबका रक्षक कौन है। लेकिन हमारा उस परमेश्वर पे भरोसा कहां होता है, दुनिया के लोगों पे ज्यादा भरोसा होता है, जबकि वही हमारी रक्षा कर रहा है, सच बताओ वही कर रहा है, आप अजमा के देखो। महाराज जी आध दैविक शरीर के दुख तो आपने कहा कि अंदर बैठ करके दूर कर रहा है, लेकिन बाहर से दुख आ रहा है तो उसका भी इलाज तो होना तो नहीं होना चाहिए, तो बाहर के दुख को भी कौन बताता है, आध्यात्मिक दुख भी कौन बताता है, ईश्वर ही दूर करते हैं। इसको अगले श्लोक से बताते हैं, पातुम गोकुलम आकुलम असनित असनि तदित वरसंगैः किसुङः असहाय एक हस्ते गोवर्धनम उद्धारोच्चैः। पातु माने रक्षा करने के लिए, किसकी रक्षा करने के लिए, गोकुलम, पूरे गोकुल की रक्षा करने के लिए। हमें लगता है पूरा विश्व ही परमात्मा का गोकुल है, इसकी रक्षा करने के लिए। कैसे रक्षा करें, आकुलम, जो बड़े व्याकुल थे, परेशान थे, गोकुलवासी बड़े परेशान थे, उन परेशान गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए। किससे परेशान थे, उनको कौन सी परेशानी आ गई थी, कहते हैं असन तडित वर्षा गई है, वज्र बिजली और वर्षा से। इंद्र भगवान ये भी कहानी जानते ना, इंद्र भगवान कुपित हो गए क्योंकि उनकी पूजा कृष्ण ने क्या किया, रुकवा दिया, तो बड़े कुपित हो गए। कुपित होकर के वज्र मतलब धड़ 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 गड़गड़ाहट की आवाज इतनी तेज के लगता है कहीं कुछ फटने वाला है, बिजली चम चम चम, और वर्षा से सारे ब्रज मंडल, ब्रज ही क्या पूरा गोकुल व्याकुल हो गया। तो इन गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने बिना किसी सहायता के एक हस्ते, बिना किसी सहायता के असहाय एक हस्ते, एक हाथ पर, हाथ भी नहीं कानी उंगली की कोने पे गोवर्धनम गोवर्धन पर्वत को क्या किया, उठा लिया। अब बताओ जब आप, मैंने बताया ना शरीर ही एक पर्वत है, कौन सा पर्वत, गो माने हुआ इंद्रियां, इंद्रियां जहां अधिष्ठित होकर के पुष्ट होती हैं उसका नाम क्या है, गोवर्धन। अब उसका गाय हो गया, गाय जिस पहाड़ पर रहकर के पुष्ट होती हैं, गो माने इंद्रियां भी हो गई। तो हमारी इंद्रियां इस शरीर पर ही अधिष्ठित होकर के पुष्ट होती नहीं होती, तो शरीर ही क्या है, गोवर्धन। तो इस गोवर्धन को उठा करके खड़ा करने वाला कौन है, देखो यदि उस कृष्ण की सत्ता, आत्मा की सत्ता न होवे तो एक पलक भी झपका नहीं सकते हो, एक श्वास अंदर की बाहर, बाहर के अंदर नहीं कर सकते हो। जीभ बाहर निकली है तो निकली है, करके गए तो गए है? वो भी नहीं कर सकते हो, लेकिन इतने बड़े स्थूल शरीर को उठाने वाला कौन है। अब बताओ उसको पूरा ताकत लगाना पड़ता है कि एक कोने पे टिका हुआ है। हम यही कहते हैं अरे इस पृथ्वी की बात छोड़ दो, पृथ्वी तो यही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो टिके हुए हैं सब स्पेस में है या इनके नीचे कोई बेस है, बेसलेस है ना, सब स्पेस में इसे लटके पड़े हैं, ये यहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है, इसे घूम रहा है। इन सबको उठाने वाला, संभालने वाला कोई ना कोई सत्ता ही नहीं सत्ता है। अब ये बताओ इतने बड़े पृथ्वी, इतना बड़ा सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सब पूरे विश्व के एक कोने में स्थित है ही नहीं है। अरे भाई आसमान में जितने तारे दिखते हैं उतने सूर्य हैं, ये तो जो सूर्य दिखता है ना तो सबसे नजदीक है, इससे भी दूर दूर कितने सूर्य होंगे, उनको भी बेस आधार देने वाला उठाने वाला कौन है, वह परमात्मा ही है। सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले कौन है, वह परमात्मा ही है। फिर भी हमें चिंता हो रही है किसकी, अपने भरण पोषण की। जब हम अपनी चिंता करते हैं ना तभी क्या कहते हैं, दुखी हो जाते हैं। सच बताऊं वो होता था ना, क्या बोलते हैं, समर्थ गुरु रामदास गए शिवाजी के पास, तो शिवाजी का थोड़ा अभिमान सा हो गया। अब लोग भी कहते हैं ना शिवाजी क्या हुआ, अभिमान हुआ, कितना अनक्षेत्र मैं खोला हुआ हूं, सबको रोटी खिलाने वाला कौन हूं, मैं हूं। तो रामदास जी महाराज ने कहा चलते हैं, जंगल की तरफ ले गए, कहे बेटा पत्थर तोड़ तो पत्थर तोड़ा, तो पत्थर के भीतर एक कहते चींटी मिली, और चींटी के पास कौन था, चावल था। तो कहा बताओ इस चींटी को भी चावल शायद तूने दिया होगा कि नहीं दिया होगा। आप खुद सोचो जंगलों में कितनी चींटियां रहती हैं, कितने पशु पक्षी वृक्ष, कितने कीट पतंगे रहते हैं, सबका पालन करने वाला कौन है। अरे विश्वंभर वह परमात्मा है तो वह आपके पालन नहीं कर सकता क्या, लेकिन फिर भी अपने खाने पीने सुख रहने की आदमी इतनी चिंता करता है। बल्कि एक रहीम का दुआ बहुत बढ़िया लगता है, क्या है, खग मृग बसत अरोगम, क्या है अरोगमन हरि अनाथ के नाथ, रहीमन बहु भेषज करत व्याध न छांगत साथ, खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। सही बताओ पशु पक्षी वही बीमार होते हैं जिनको हमने पाले हैं। आप कभी नील गाय को देखे होगे जंगल में, कौन से पशु, एक नील गाय देखा है, कभी नहीं देखा होगा, एकदम हट्टा कट्टा रहता है पूरा। आप घर की पाली हुई गाय, घर का पाला हुआ घोड़ा इतना चिकना, इतना हट्टा कट्टा, इतना दौड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसको अपना खाना खिला करके ना खुद रोगी बन गए हो और उसको भी क्या बना दिए हो, रोगी बना दिए हो। और जंगल में जो निश्चिंत पशु पक्षी रहते हैं, चाहे कौवा हो, चाहे कबूतर हो, चाहे जो भी हो, वह सब क्या है? आप भले अभिमान करो कि इन पक्षियों को हम खिलाने वाले हैं, हम नहीं खिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ कबूतर भले वो दो कुंतल अनाज, बल्कि हम तो कहते हैं वो पक्षियों के नाम पे दो कुंतल अनाज बेच के कमाता है। सही बताओ, बताओ क्या कर रहा है? पक्षियों को खिला रहा है, कमा रहा है, वो बताओ, वो अपनी कमाई कर रहा है। अच्छा आप क्या कर रहे हो? पक्षियों को खिला रहे हो, कमा रहे हो। अरे आप भी भाई 50 रुपए का ये क्या चना फेंक दिया तो सोचते हो 5,000 रुपए का पुण्य हो जाए या 50,000 का पुण्य हो जाए तब खिलाते हो। यदि 50,000 के पुण्य पाने का लालच न होवे न तो कभी किसी को खिला दे, तो आप उसको खिला नहीं रहे, उससे कुछ पाने का प्रयास है, पुण्य अर्जन करने का प्रयास है। तो इसको उसको खिला करके स्वर्ग में जाने की तैयारी है कि वहां के सुख वैभव मिल जाए अथवा यहाँ के रोग दुख दूर हो जाए, इसके लिए हम कराते हैं। कोई कारण किसी को खिला वाला नहीं रहा, और नहीं खिलाएंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, बल्कि और स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया खाएंगे, अपना भोजन खोज को खोज खा लेंगे। हम कितनों को खिला देते हैं, तो सारे विश्व का पालन करने वाला कौन है? अच्छा इस लीला से शिक्षा मिली, और हमने भी देखा, सही बताऊं, एक बार हम भी नए नए महात्मा जब बने तो जानते हो जब नया नया महात्मा होता है ना, नाराज होना लेकिन बात सही है, खूब आडंबर करता है, चंदन कहीं कथा करने जाऊं ना तो खड़ाऊ पहनी राय कहूं लगे कि मैं कोई सिद्ध महात्मा आ रहा है। सही बता रहा हूं, अब अंदर से तो क्या है, असिद्ध है। तो जो मैंने एक दिन बताया, जो अंदर से कुरूप हो ना वही बाहर से सस्ता है, अंदर की कुरूपता को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। तो जो अंदर से असिद्ध है, जिसको अपने अंदर ही नहीं विश्वास है, वही बाहर से क्या करता है, आडंबर करता है। तो मैं भी पूरा इन पूरा एकदम, और क्या जो लगाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, मैं अपनी बता रहा हूं कि मैं कैसा आडंबर किया, मैं अपना बता रहा हूं। जो दूसरे लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं उसकी हमें नहीं, हम कमेंट नहीं किसी भी कस रहे हैं। खड़ाऊ पहन गया वो क्या कील वाली, फिर वो भी बड़ी मुश्किल हो गई, चलना नया नया सीखना, चलना पूरा ठेठे पड़ गए, फिर कील वाली नहीं चला पाया तो पट्टी वाली लिया, तो उसमें जो वो बगल में टीन की एक चद्दर ने एक बार पांव पांव लगा के पूरी कुहनी नीचे पूरा कट गया, खून बहना शुरू कर दिया। लेकिन अब आडंबर करना है, कुछ न कुछ दिखाना है, तो कुछ कुछ दुख तो सह नहीं पड़ेगा, क्या करे। सही बताओ ये सब कष्ट क्या किए सहे। तो हम भी गंगा जी में नहाए, और गंगा जी नहाने के बाद सोचे हमने ऋषि मुनियों को गंगा में बैठ करके तपस्या करते हुए देखे हैं, तो हम भी गंगा जी में बैठ कर क्या करूंगा, तपस्या करूंगा। सही बताऊं मैं जो किया हूं वो मैं बता रहा हूं। गंगा जी में बैठ गया इतने पानी में, गंगा जी किनारे इतने पानी में बैठ गया, क्योंकि पानी इतना बैठने में इतना पानी रहा होगा तो समझ घुटने के नीचे तक खड़े होने में रहा होगा, बैठ करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। एक घंटे तक बैठा रहा, शरीर तो ठंडा हो गया होगा, शरीर से आग निकलना शुरू हो गई, आंखें एकदम लाल, रक्त वर है। फिर वहां जब बाहर निकला तो 2 दिन बुखार आया। कारण क्या था? जो गंगा जी के अंदर हमें सर्दी लगी, उस सर्दी को हटाने के लिए परमात्मा को इस शरीर को क्या करना पड़ा, गर्म हीट अप करना पड़ा। इसलिए देखना सर्दी के समय में आपके शरीर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और गर्मी के समय में आपका शरीर का टेम्परेचर कम रहता है। तो ये सारी व्यवस्था कौन कर रहा है, उस आध्यात्मिक तापों से बचाने का उपाय कौन कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। बच्चे कितने भीड़ जाते हैं, कितने खेलते हैं, लेकिन उनकी रक्षा उस बारिश से तूफान से कौन करता है। चलो यहां 2-3 चीजें शिक्षा दिया। एक तो देवता लोग सत्व प्रधान होते हैं, सत्व प्रधान व्यक्ति को अपने ऐश्वर्य अथवा पद का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार से अशांति बढ़ती है, इसलिए भगवान अहंकार को तोड़ करके देवता पे अनुग्रह किए। दूसरा है कि बड़ी सी बड़ी विपत्ति में हमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से उसका सामना करना चाहिए, धैर्य से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है। तो दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा कि जीव बहुत दीन हो चुका है, उसके अंदर एक भिखारीपना आ गया है, गोवर्धन को उठा करके भगवान उसके स्वाभिमान को जगा करके भी जीव का कल्याण करते हैं। कहने का भाव, जिसका अहंकार बढ़ गया है उसको मिटा करके उसका कल्याण करते हैं, जो दीन हो चुका है उसके स्वाभिमान को क्या करते हैं, जगा करके उसका कल्याण करते हैं। अब बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी धैर्य को ग्रहण करके उस विपत्ति का मुकाबला करना चाहिए, विपत्ति से भागना नहीं चाहिए। ऐसा तीन अभिनयों के द्वारा, एक काम एक अभिनय करके, तीन शिक्षा दे करके भगवान हम सबका अनुग्रह कर रहे हैं। आगे बढ़े। अब भगवान वहां से निकलते हैं मथुरा। कहां से हैं? मथुरा। अब मथुरा में आकर के लोभ की वृत्ति को नष्ट करते हैं। किस वृत्ति को? अरे लोभ किसके लिए करते हो बोलो भाई? इस शरीर के लिए। किसके लिए चाहिए हमें? जो लोभ है किसके लिए चाहिए? लोभ अथवा जो संग्रह है वह किसके लिए चाहिए? ये शरीर नित्य है का नित्य है मेरे बता दो। इस अनित्य के लिए कितना लोभ, कितना संग्रह। इसे भगवान ने पहले धेनुकासुर को मारा, न खाता था न खाने देता था, याद है ना? बगीचे में इतने फल थे लेकिन कोई खाने, भगवान ने उसको मार करके निपटा दिया। अब यहां भी भगवान आते हैं मथुरा में, कहते वासो लोभा कलितम धावत रजकम शिला तरैर हत्वा विस्मित्य तद अपराधम विकुंठ वासो अर्पितः तस्मई। कहते वासो लोभ आकलितम, वस्त्रों के लोभ से युक्त, वस्त्रों के लोभ से युक्त, धावत माने दौड़ते हुए, रजकम माने धोबी को भगवान ने मार डाला। भागवत में तो आता है क्या मारा, थप्पड़ मारा और सरई गायब। लेकिन यहां कहते हैं शिला तरैर हत्वा, पत्थर से मार करके भगवान ने उसका भी, कहते विस्मित तद अपराधम, उसने जो अपराध किया था, गलती किया था, उस गलती को क्या किया, भुलवा करके उसके लिए बैकुंठवास प्रदान कर दिया। ये लीला है। अब कहते हैं कृष्ण ने धोबी से क्या मांगा, वस्त्र मांगा, और ये भी कहा भाई वस्त्र दोगे तो मैं तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन उसने वस्त्र दिए नहीं। अब देखो संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब वस्तु किसकी है आप बताओ, भगवान की है कि आपकी अपनी है? तो उस पर हम अपना अनधिकार चेष्टा कर ले में, तो अपराध है कि नहीं अपराध है? उसको अपना मान लेना ही सबसे बड़ा अपराध है। परमात्मा इस लीला के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि जो वस्तु तुम्हें दी गई है वह तुम्हारी नहीं है, किसी की अमानत है। जब उस अमानत को लेने वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आ जाए तो उस वस्तु को रखने का लोभ मत करना, उस वस्तु को उसको क्या करना, दे देना। भगवान ने समझाया लेकिन धोबी को समझ में हमें भी नहीं आती। क्या आती है भाई? परमात्मा ने आपको क्या दिया है, शक्ति दिया है, तो शक्ति भी एक किसी निर्बल व्यक्ति की अमानत है। कोई गिरा हुआ पशु है, कोई वृद्ध जो बेचारा चल नहीं सकता, अपनी शक्ति से उसको सड़क के इस पार से उस पार कर दो, गिरे हुए व्यक्ति को क्या कर दो, उठा दो, तो आपने उस परमात्मा की दी हुई शक्ति का क्या किया है, सदुपयोग किया है। यदि शक्ति का सदुपयोग नहीं करोगे तो आप अपराधी बन जाओगे। परमात्मा ने आपके पास क्या दिया है, धन दिया है ना? कई लोग हैं पैसे वाले हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जो गरीब है, बहुत गरीब है, और वास्तव में गरीब है। कोई तो गरीब बनता है, कोई वास्तव में क्या है, गरीब है। दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। अरे धन आपका किसी काम आएगा नहीं, सही बता रहा हूं, मरेंगे तो भी कितना भी जमा रहेगा सब छोड़ के जाएंगे, चाहे यति हो चाहे राजा होवे चाहे जो भी होवे। तो उस धन का सच्चा सदुपयोग है कि किसी बच्चे की शिक्षा हो जाए, किसी रोगी व्यक्ति की क्या हो जाए, दवाई हो जाए। मतलब जो अधिकारी व्यक्ति है उसके उस अधिकार में धन का उपयोग कर दो, उस धन से बड़ा सदुपयोग क्या हो सकता बताओ। कोई भूखा व्यक्ति है, आपके पास 50,000 रुपए रखे हैं और आपके सामने भूखा आदमी है, अरे उसको 50 रुपए दे के, अरे हम तो कहते कैश मत दो, आवश्यकता भी नहीं, पता नहीं कैसे दोगे, शराब पिएगा क्या करेगा, अरे उसको तो भूख लगी है, लग रहा है, उसको होटल में बैठाओ भाई, जितने का खाना तू खा ले, 50 नहीं 500 का खा मैं दे दूंगा। आपने धन का क्या किया बोलो? परमात्मा ने आपको क्या दिया है? बुद्धि दिया है, उस बुद्धि का उपयोग दूसरे को क्या देना है? शिक्षा देना है। अब हम, अरे कई ऐसे गरीब बच्चे हैं अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, खुद नहीं पढ़ सकते हैं, परमात्मा ने आपको अकल दे दिया है तो उस बुद्धि का उपयोग क्या करो। अरे कितने क्या इलिटरेट हैं, भले हम थोड़े पढ़े हैं लेकिन कितने काम वाली है, आपके यहां जो काम करने वाली महाजन है वो भी क्या है, शिक्षित है नहीं शिक्षित है। अरे कम से कम यदि परमात्मा ने आपको बुद्धि दिया है तो इतना ही मत करो कि भाई काम करो पैसा ले, उसको प्रोत्साहित करो, ले बेटा थोड़ा सा पढ़ ले। हमने कईयों को समझाने का प्रयास किया, 16 साल की लड़की है पानीपत में, हमने उससे कहा भाई गीता नाम है, हमने कहा तू पढ़ ले, अभी तो जिंदगी है, आगे जिंदगी कितना बड़ा मुश्किल है। पहले औरतों के पास 50 काम होते थे, बिजी रहती थी, अब तो काम ही नहीं है तो क्या करोगी, खाली समय काटना भी बड़ा मुश्किल है, कुछ पढ़ी लिखी रहोगे तो समय कट भी जाएगा, लेकिन कोई इतना बेचारी को समय नहीं मिलता है। हमने कहा जहां काम करती उसी मैडम से पढ़ लिया कर, महाराज किसको फुर्सत है पढ़ाने के लिए। तो मैं तो कहता है परमात्मा ने आपको बुद्धि दिया है तो उस बुद्धि का भी क्या करना चाहिए, सच्चा सदुपयोग करो। हम कहते बुद्धि नहीं, जो भी परमात्मा ने दिया है वह किसी न किसी की अमानत है, शक्ति है तो निर्बल की अमानत है, धन है तो गरीब की अमानत है, बुद्धि है तो किसकी, विद्या अमानत में रखी गई है, किसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जो अनपढ़ है, अनपढ़ की अमानत है। तो जितना आप उसका सदुपयोग करोगे आपको वह वस्तु उतना ज्यादा बढ़ेगी, और उसका उपयोग नहीं करोगे ना तो वस्तु क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी पक्का। यहां गवर्नमेंट जॉब में कुछ लोग होंगे, नहीं होंगे तो गवर्नमेंट जॉब का एक नियम है, एक इंजीनियर के लिए मान लो 10 लाख काम करने के लिए मिला है एक वित्तवर्षीय योजना में, ये तो जानते हैं आप लोग, इंजीनियर है या कोई नेता जो भी है 10 लाख मिला तो उसको एक साल में 10 लाख रुपए क्या करना है, खर्च करना है। यदि इसने 10 लाख खर्च कर दिया तो अगले वित्तवर्षीय योजना में उसको काम और ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, उसको कहेंगे कर्मठ इंजीनियर है, इसको कहीं बड़ा प्रोजेक्ट दो, कोई नया प्रोजेक्ट और बड़ा प्रोजेक्ट दो, करोड़ों का काम दो, एक करने वाला व्यक्ति है। और वही इंजीनियर 10 लाख मिला और उसने पूरे साल में मात्र 50,000 रुपए खर्च किया, बताओ अगले वित्तवर्षीय योजना में उसको 5 पैसा अलॉट करेगा क्या गवर्नमेंट, उसको कहेगा इसको ऑफिस अटैच कर दो, कहां कर दो, ऑफिस अटैच, फाइलों पे सिग्नेचर करे, ये आदमी काम करने लायक है ही नहीं, साइट पे जाने वाला है ही नहीं, तो इसको कहां अटैच किया, ऑफिस में। ऐसे परमात्मा ने हमें बुद्धि दिया, हमने पक्का बुद्धि का पूरा उपयोग किया तो हो सकता है परमात्मा अगले वित्तवर्षीय योजना में या अगले जन्म में आपको इतनी बड़ी बुद्धि देवे कि आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनकर के दुनिया का बहुत बड़ा उद्धार कर सकते हो। परमात्मा ने आपको इतना बल दिया, उस बल का यदि सच्चा आपने उपयोग कर दिया तो अगले वित्तवर्षीय में हो सकता है परमात्मा आपको इतना बल दे देवे कि सारी दुनिया की आप सेवा कर सको, इतने सक्षम बना देवे। परमात्मा ने आपको इतना धन दिया, उस धन से यदि आपने सेवा किया हो सकता है परमेश्वर आपको कुबेर बना देवे, धनाधिपति देवता बना देवे। लेकिन यदि आपने उसका उपयोग नहीं किया तो परमात्मा के पास दूसरा भी है, आईएनटीपी डिवीजन में डाल देगा। कमजोर सेवा शक्ति नहीं किया किसी दुर्बल की तो आपको अगले जन्म में न लंगड़ा लूला बना के पैदा कर देगा। तेरे को सेवा लेने की ज्यादा आदत है ना, ले सारी जिंदगी तू सेवा ही करता रहे। यदि अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया ना, तो परमात्मा अगले वित्त वर्ष की योजना में क्या बनाएगा बोलो भाई, अल्प बुद्धि वाला बना देगा या कहीं और जगह डाल देगा, क्या पता ऐसा बुद्धि की 30-35% में पास होने वाले बन जाओगे, कहीं नौकरी नहीं लगेगी। तो जो भी परमात्मा ने आपको शक्ति दी है उस शक्ति का क्या करना चाहिए, पूरी तरह से उपयोग करो। यदि आपके सामने उस अमानत को चाहने वाला भले न चाहे, लेकिन आप जानते हो को अधिकारी आपके पास मौजूद हो गया तो उसको खिला दो, उसको पहना दो, उसको सेवा कर दो। लेकिन हम उस सेवा से हमेशा क्या करते हैं, भागते हैं। तभी तुम्हारे बेचारे माँ बाप कहाँ रहते हैं, वृद्धाश्रम में, और क्या कहाँ रहते हैं। अरे सेवा करने का मौका मिला है, माँ की सेवा करने का, किसी के पास तो माँ है तो बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं है, किसी के तो माँ बाप दोनों नहीं है। सेवा करना भी चाहे तो किसकी सेवा करें, लेकिन जो सेवा करने का मौका मिला है उस सेवा से आप मुंह मोड़ रहे हो तो जान लेना अगले वित्त वर्ष में आप ऐसी योनि में जाओगे जहां सेवा करवाने लायक मतलब लंगड़े लूले अपाही जैसे बन के पैदा हो जाएंगे कि हमारी सेवा कहीं होने वाली। तो ये लीला भगवान ने कहां से सिखाया, उस धोबी से। धोबी के पास वस्त्र थे, भगवान ने कहा देखो भाई हम लोगों के पास वस्त्र है नहीं, हम लोगों के पास वस्त्र है नहीं, तुम अपने वस्त्र दे दो। लेकिन धोबी की बात समझ नहीं आई और पूरे पहले का अपराध जानते ही हैं। वह धोबी कौन था राम के समय में, जिसके कारण भगवान ने अपनी पत्नी का क्या किया था, त्याग कर दिया था। तो कहा चल बेटा इस बार निपटा देते हैं महावला, और उसका भी सियावर रामचंद्र की जय कर दिया। कहने का भाव है ज्ञान हो जाता है तो आपके भीतर लोभ की वृत्ति, संग्रह की वृत्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब भगवान एक और है, भगवान सक्षम लोगों पे नहीं कृपा करते हैं, जो इस समाज से तिरस्कृत व्यक्ति हैं, जिसको समाज के लोग क्या करते हैं, तिरस्कार करते रहते हैं, ऐसे भी व्यक्तियों पर भगवान कृपा करते हैं। तो ऐसा समाज से तिरस्कृत कौन है, तो आती है कुब्जा। कौन आती है, कुब्जा। ऐसे लोग समाज से क्या होते हैं, ए कुबगे इधर आ, कैसे कैसे लोगों की कितने कितने ताने नहीं सुनने पड़ते हैं समाज में, उसको कोई अपने पास बैठाना पसंद करेगा क्या, अपने साथ उसको ले जाने पसंद करेगा क्या। ते समाज के कैसे लोग हैं, तिरस्कृत हैं। और इसका काम भी समाज में प्रतिष्ठित काम नहीं था, किसका, कुब्जा का काम प्रतिष्ठित काम नहीं। इसने कहा ना हमारे यहां लोग अपनी थकान, शहर में नया अपरिचित व्यक्ति हमारे यहां अपनी थकान मिटाने के लिए आया करता है, मतलब एक तरह से वो क्या बोलते हैं, तवायफ टाइप नहीं होती हैं, नाचना गाना उनको खुश करना, इस तरह से इनका काम था क्योंकि ऐसा वहां दिखाया गया है। तो अब देखना, त्रेधा वक्त शरीराम अति लंब ओष्ठिम स्खलद बपुर वचनाम सग चंदन परितोषात कुब्जाम रिजवानम अकरोत। त्रेधा वक्त शरीरम, जिसका शरीर तीन भागों से क्या था, टेढ़ा मेढ़ा था। हमारा भी शरीर टेढ़ा ही मेढ़ा है देखा जाए, नहीं है रज सत और तम तीन गुणों ने तीन जगह से हमें मरोड़ करके रख दिया था। चलो जो भी त्रिभुजा है, अति लंब होष्ठी जो बड़ी कुरूप है, लंबे लंबे क्या है, होष्ठ हैं, स्खलद शरीर कांप रहे हैं, वपुह वचनाद बांगी से कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही है। ऐसा क्यों कर रही है, कहते भाव में डूब करके, कहां कोई डर के मारे नहीं, भाव में डूब करके। अब भगवान को देखते ही उसके पास जो वस्तु थी सब कुछ समर्पित कर दिया, किसको, भगवान को। क्या दिया, सक चंदन, केवल क्या दिया, सक माने माला और चंदन, इसी से भगवान उसके ऊपर क्या हो गए, संतुष्ट होकर के उसको रिजवान एकदम सीधा बना दिया। क्या किया? सीधा बना दिया। देखो इसका यह भाव है कि भगवान वाह सुंदरता नहीं देखते हैं। भगवान किस भाव को देखते हैं? भीतर के भाव को देखते हैं। यदि भगवान को वाह सुंदरता से कोई मतलब होता तो सुपनखा कितनी सुंदर बन के गई थी, किसके पास है? भगवान के पास है। और भगवान ने क्या कहा? मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, निर्मल जन सो मोहि भावा। निर्मल जन जो सो मोहि भावा, जो निर्मल व्यक्ति है वही मेरे को पसंद है, मेरे कपट छल अच्छा लगता नहीं। तो सुपनखा का उन्होंने तिरस्कार कर दिया। और ऐसा है गर्ग संहिता में आता है कि वही सुपनखा इस जन्म में क्या बनी है? कुब्जा बनी है। तो परमात्मा जिस मतलब जो व्यक्ति सुंदर है, सुंदरता का अभिमान करके व्यभिचार आदि कर्मों में करने की तत्पर हो रहा है, किसके कारण? सुंदरता का अभिमान से। भगवान उसके सुंदरता को किसमें बदल देते हैं? कुरूपता में बदल करके भी उसका कल्याण कर देते हैं। जो सुंदरता के रूप में जिस सुपनखा ने भगवान को नहीं प्राप्त कर पाई, वही कुरूप बन करके सुपनखा किसके रूप में? त्रिवक्रा माने कुब्जा के रूप में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए हमें बाहर की सुंदरता नहीं, हमें किसकी सुंदरता चाहिए? भीतर की सुंदरता चाहिए। कुब्जा शबरी एकमात्र चंदन दे दिए, माला दे दिए, जूठे बेद दे दिए, इसी से वो संतुष्ट हो गए और भगवान ने उसको सुंदर बना दिया। इसलिए लेकिन हम लोग तो बस बाहर की सुंदरता में लगे हुए हैं। आजकल तो और बड़ा मुश्किल काम हो गया है। हमारे महात्माओं का एक ड्रेस होता था पहले, नहीं क्या होता था? या तो सारे बाल रखेंगे अथवा सारे बाल निकालेंगे, कटिंग नहीं कराते हैं। ज्यादातर आप लोग देखे होंगे पुराने महात्माओं में कोई कटिंग नहीं कराता। आजकल लोग क्या करने लगे हैं? कटिंग कराते हैं, दाढ़ी कटिंग कराएंगे, बाल कटिंग कराएंगे, दाढ़ी छोटी रखेंगे, बाल बड़े रखेंगे, अथवा शेव करेंगे, बाल करेंगे। कई ने हमसे कहा कि महाराज जी ये बंबई है, बंबई में तो महाराजन चलता है, इससे क्या फर्क पड़ता तत्व ज्ञान में? किसी ने कहा ना इससे तत्व ज्ञान में फर्क क्या पड़ता है? अरे भाई उससे नहीं पड़ता है तो लाल वस्त्र भी पहनने से क्या फर्क पड़ता है? तब तो पैंट शर्ट भी पहन सकते हो ना भाई। हम तो बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस समय जिस उपाधि को धारण करे, व्यक्ति को उस उपाधि के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मेरे बता दो क्या करना चाहिए? जिस समय जिस उपाधि में रहे, आप लोग सुपनखा माने कुछ और नहीं है। सुपनखा माने क्या हुआ? जिसकी शरीर में ही मैं बुद्धि बनकर के शरीर को सजाने संवारने में लगा हुआ है, वह सबके सब सुपनखा है। सुपनखा जिसके नाखून कैसे होवे, सूप जैसे होवे, उसका नाम क्या है? सुपनखा। मतलब नाखून ही सजाने की बात नहीं हो रही है, सारे अंगों को ही सजाने संवारने में ही जो व्यक्ति लगा हुआ है उसका नाम क्या है? अच्छा बताओ, तत्व ज्ञान होने के बाद तो हमने तो सुना है जैन, महावीर जैन, गौतम बुद्ध आदि कहते शरीर शरीर वस्त्र है में, मतलब एकदम तत्व ज्ञान की प्रबल निष्ठा के बाद तन में वस्त्र है अथवा वस्त्र नहीं है, वस्त्र का भी भान नहीं रहता है, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, तो इसको सजाने संवारने ये वो करने की प्रवृत्ति कहां से पैदा हो जाती है भाई? ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे एक रंगमंच का अभिनेता होता है ना, रंगमंच पे जाता है, सोचता है थोड़ा सस धस के जाता हूं, लोग देखेंगे क्या बोलेंगे संसार के लोग। उसी तरह से भी आप भी ज्ञान के बाद भी शरीर में उतने महत्व बुद्धि रख दिए तो आपके प्रेम परिमाने में कोई फायदा? इसलिए भाई मैं बार बार कहता, थोड़ा इस शरीर के धर्म से भी क्या करो, ऊपर उठो। कब तक सजाते रहोगे, कितने सजाओगे? मैं बताए बचपन में एक बच्चे से पूछो, हमने भी बहुत कुछ किए, जितना शरीर में मैं भाव होता है कम से कम 25 बार शीशे देखता है आदमी? नहीं देखता। और जैसे शरीर से मैं समाप्त होता चला जाता है, देखो जवानी में कितनी बार शीशे देखते थे हम, या आप कितनी बार देखते थे आप बताओ, यूं 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 कहां ये लगाना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और शरीर से मैं भाव समाप्त होता है, महीने हो जाते शीशे नहीं देख पाते। सही बताओ, है कि नहीं ऐसी अवस्था आप बताओ? लेकिन इस अवस्था में पहुंच करके भी हम वही हरकत करें तो समझ लेना कि अभी आप शरीर से ऊपर उठे ही नहीं है, शरीर में चिपके पड़े हो। सच बताऊं, महात्माओं के लिए सब ने जो लाल कपड़े बाल रखना या बाल बनवा देना एक तरह से कुरूप बनाने का मतलब था कि संसार को देख करके संसार हमारे पास आवे ही नहीं, संसार भाग जाए। इसलिए देखो ऋषभ देव का दृष्टांत आता, अपने शरीर में जानबूझ के क्या करते थे, मल मूत्र लपेट लेते थे, धूल लपेट लेते थे कि संसार वाले मेरे पास आवे ही न। और आज हम क्या अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं कि संसार वाला खींचे हमारी तरफ, आकर्षित होवे? तो समझ लेना कि राम की चौपाई वही तुलसी की चौपाई, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, निर्मल जन जो सो मोहि पावा। मेरे भाई ठीक है संसार मिल जाएगा लेकिन परमात्मा पक्का दूर हो जाएगा। धोखा हम किसी भी नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दूसरा कोई धोखा पा ही नहीं सकता है। चलो जो भी है, तो क्या हुआ यहां पे, हमें अपने भीतर के क्या करना होगा, इस कुब्जा को ठीक करने का, शरीर भाव को, मैं जो शरीर में हमारी मैं बुद्धि है उसको क्या करना है, समाप्त करके अपने स्वरूप में मैं बुद्धि कर लेंगे तब आप एकदम सीधे बन जाओगे। क्या बन जाओगे? सीधे। और आपको उस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी भाव को और बताया, निहत प्रपात हरिंगा हरि चरणा अग्रेण कुवलया पीड तुंगोन्मत्त मतंग पतंगवद दीपकस्य अग्रे। भगवान ने दो अभिमान हटाया, एक हमारे जीवन में दो अभिमान होते हैं शरीर में, एक होता सुंदरता का अभिमान, क्यों भाई क्या अभिमान होता है, सुंदरता का अभिमान, और दूसरा होता है किसका अभिमान, बल का अभिमान, किसका अभिमान, बल का अभिमान। तो यहां पर उन्होंने सुपनखा के रूप में आकर कुरूपता पैदा करके उसके सुंदरता के अभिमान को क्या किया था, मिटाया था। मतलब तो भगवान कहते हैं कि उस समय तुम अपराध की थी, गलत की थी, सुंदरता के कारण बाहरी सजाने से तू सोची थी मेरे को मिल जाऊंगा, लेकिन मैं मिलने वाला हूं नहीं, संसार तो मिल सकता लेकिन परमात्मा, इसलिए मैंने तुम्हें दंड दे करके भीतर से सुंदर बनाया, बाहर से तू जैसी भी है मुझे अच्छी लगती है। अब दूसरा बल है, किसका बल है, शरीर का बल है। तो भगवान ने कहते हैं कि हरिंगा, भगवान ने निहतः मार दिया, किसको मारा है, गिरा दिया, मारा जाकर गिर पड़ा, कौन, हरि चरण अग्रेण, भगवान के चरणों के आगे भाग से, कौन, कुवलया पीड, कौन सा हाथी था, कुवलया पीड नामक जो हाथी था, भगवान ने उसके एक लात मारा, लात मार करके उसको क्या किया, गिरा दिया। वह कैसा था, तुंग, बड़ा विशाल हाथी था, अपने बल से मतवाला हो रहा था, वो तो भगवान के सामने ऐसे गिरा जैसे दीपक के सामने पतंगा गिर करके खाक हो जाता है। तो परमात्मा आपके बल के अभिमान को भी तोड़ देते हैं यदि भगवान कृपा करेंगे तो, और साधना भी करोगे तो भी आपको बल का अभिमान रह नहीं जाएगा, क्योंकि बल तो सारा किसका है, अरे भाई आप खुद सोचो, आप कहते हैं मैं बहुत बलवान हूं, मेरे सामने तुम्हारी हिम्मत है क्या टक्कर लेने की, एक मच्छर आ जाए, कौन सा मच्छर, मलेरिया वाला, कौन सा, उसका वजन कितना है, क्यों कितना होगा, एक ग्राम कहां होगा, मिलीग्राम से बात करो, कितना होगा, मिलीग्राम, और आपका वजन 80 किलो, जरा सा यूं डस लेवे हैं, कितना उसके पास जहर होगा बताओ, कितना मामला होगा, यूं पीस दो तो कुछ निकलता भी नहीं माल, और सारे शरीर को वाइब्रेटर बना देता है, मलेरिया वाला देखे ना, वाइब्रेटर वाले जानते ना, कपा देता है, तीन तीन रजाई डालो ना तो भी ठंडी जाती, और कहीं वही डेंगू वाला हो गया तो कहना ही क्या। तो बताओ मच्छर बलवान है कि आप बलवान, वही मेरे को बता दो, जाओ बात छोड़ दो, कौन बलवान है? अब फिर मच्छर के सामने भी तुम्हारा बल किसी काम का नहीं है, अभिमान करते मेरे जैसा कोई बल चलत दसानन डोलत धरनी, जब मैं पृथ्वी पे चलता हूं तो सारी पृथ्वी कांपना लगती है। आजकल वो क्या दादा लोग होते ना, माफिया है, दादे चलते हैं, थोड़ा सड़क पे सन्नाटा छा जाता है, अरे ऐसे बेमौत मरते हैं कि एक मच्छर मारे मर जाते हैं सर। इसलिए मेरे भाई बल का भी अभिमान भूल करके भी मत करो, रूप का अभिमान मत करना, मतलब रूप का अभिमान भी छूट जाएगा, दूसरा किसका अभिमान छूटेगा, बल का अभिमान छूटेगा, क्योंकि जब तक ये अभिमान रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कबीर का भजन है, ओ बीजक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा, किस पे अभिमान करें। अब इसके मरने के बाद भगवान ने चार पहलवानों को मारा, कितने चार थे ना कि दो थे, हा? दो थे चार थे भाई, चार थे शायद, चारों में मुष्टिक और चार थे कुल मिलाकर। उद्धमिसात सहरंगे श्रीरंगेन अंग संगमं प्राप्य मुष्टिका चारुंग याख्यो यवतु निःशेषम सपदवी। कहते युद्ध के बहाने से ही, किसे खेल के बहाने से, युद्ध का क्या बहाना कहो, रंगभूमि में मतलब मंच पे, रंगभूमि माने क्या हुआ, मंच पे ही भगवान का संग पाकर के ये जो पहलवान थे मुष्टिक चारुंग और दो है नाम भाई, कितने थे चार थे, उनको तुरंत ही भगवान ने मार करके मोक्ष पद को प्रदान कर दिया। देखना जब ये सब अवस्था हो जाती है ना, तो आपके जीवन में भी चार पुरुषार्थ रह जाते हैं, पुरुष पहलवान हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों के लिए सारी जिंदगी हम हाय हाय करते रहते हैं। जब ज्ञान की इस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं ना, तो चारों पुरुषार्थ समाप्त हो जाते हैं, क्या जाते हैं, चार काम की इच्छा तो समाप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब मानो चार न मानो किस, कौन से पहलवान मानो, दो पहलवान, यहां तो दो ही दिया, मुष्टिक और चारुंगाख्य, मुष्टिक और कौन है चारुंग नामक दो पहलवान हैं। इन दोनों पहलवानों को भगवान ने क्या किया, मार गिराया, एक ने एक को बलराम ने और दूसरे को भगवान ने, मार गिरा कि नहीं गिरा, तो ऐसा गिराया तो चार पहलवानों, चार न मान के दो मानो तो कौन होगा, काम और अर्थ, अर्थ और काम। अच्छा हमें अर्थ क्यों चाहिए बताओ, भोग के लिए, आवश्यकता के लिए तो मिल जाता है, हम आवश्यकता के लिए अर्थ ज्यादा दुख भी नहीं देता है, इन अर्थ हमें क्यों चाहिए, भोग के लिए। तो अब जिसके जीवन में भोग की वृत्ति समाप्त हो गई है, भोग का कोई पुरुषार्थ ही नहीं रह गया है, तो उसके भीतर अर्थ का भी पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो अर्थ और काम दोनों के पुरुषार्थ अपने आप क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अरे री कौन सा माने, चार पहलवान को माने, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि धर्म से हमें कहां जाना होगा, स्वर्ग। अब स्वर्ग भी हमें इस संसार की तरह क्या लगता है, तुच्छ लगता है, ब्रह्मलोक भी तुच्छ लगता है, तो उस साधन का क्या प्रयोजन जिस साध्य की तरफ हमें जाना ही नहीं है। अब मोक्ष तो उसका स्वरूप ही हो जाता है, जब तक हम मोक्ष के विषय में जानते नहीं थे तब तक मोक्ष के लिए हम मेहनत करते थे, जब जाना कि मोक्ष तो मेरा अपना क्या है, स्वरूप ही है, उसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो आपके जीवन के चारों पुरुषार्थ क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो चार पहलवान किसके प्रतीक हुए, बोलो भाई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यदि चार न लो दो लोगे तो किसको मानना पड़ेगा, अर्थ और काम को। ये थोड़ा वेदांत परक है, पूरी लीला ध्यान देना है, इतनी साधारण भगवान की लीला। देखो हम कहते हैं भगवान ने लीला किया है, लीला क्यों किया जाता है? कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए। तो इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिल रही है ये हमें सीखना है। अब अंतिम लड़ाई है स्वरूप में बैठने के लिए, कौन बचा है? कंस। मथुरा में तभी तो बैठेंगे ना, अंतिम लड़ाई कौन है? कंस को मारना है। तो देह कृताद अपराध वैकुंठ उत्कंठितांतरात्मानम यदुवर कुलाव तंसम कंसम विध्वंसयामास। कहते हैं अपने देह कृत अपराध से ही, कंस ने अपने शरीर से ही बहुत बड़ा क्या किया था? अपराध किया था। उस अपराध से वह वैकुंठ प्राप्त की इच्छा कर रहा था कि बहुत मैंने पाप किया हूं, अब क्या करूं, वैकुंठ ही चला जाऊं। तो ऐसे कंस को भी यदकुल भूषणम श्री कृष्ण चंद्रम, यदकुल के आभूषण भगवान श्री कृष्ण ने विनाश करके उसको भी अपना लोक क्या किया? दे दिया। अब देखो साफ बताऊं, शरीर है तो कुछ न कुछ अपराध होता ही होता है। तो इस शरीर की ही निवृत्ति करके या शरीर से ही पूरी तरह से मन भाव हटा करके, मैं भाव हटा करके भगवान उस मथुरा पर प्रतिष्ठित हो गए। मथुरा माने एकदम मैं भाव को समाप्त करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस पे और व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या थोड़ी इस पे चर्चा, क्योंकि यही भाव रावण भी करता था। राम से बैर बांध करके रावण भी मुक्ति की कामना करना चाहता। रावण ने तो कह दिया भाई कि क्या है, तामस देह हो ही नहीं भजना क्या है, ये शरीर क्या है, तामस है, भजन तो होता नहीं है, भाव से प्रेम से तो भजन होता ही नहीं है। इसे भजन कैसा करना चाहिए? द्वेष बुद्धि से ही चिंतन करके ही हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर ले। तो इस पे चिंतन हम लोग कब करेंगे? थोड़ा सा कल करेंगे भाई, कितने दिन बाकी है पूरा भी करना। इतना हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।